नारायण 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 कई दिनों से ज्यादा दिन हुए थोड़े दिनों से मेरे मन में गीता जी को लेकर कुछ बातें आई। इन बातों को मैं कहूं ऐसे मन में थी, परंतु मेरे यूं विचार नहीं होता कहूं वो कौन समझेगा। साहित्य से ध्यान आदमी देते नहीं, मेरी बातों के तो ध्यान कम देते हैं, वो अपनी तरफ से देते हैं, अपनी तरफ से सर सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, परंतु मैं चाहता हूँ वैसे गहरे उतर करके, और समझने वाले बहुत कम है, समझते नहीं, ध्यान देते नहीं। मैं ऐसी बात नहीं मानता हूँ कि आप लोगों में उसकी पात्रता नहीं है, आप में वो योग्यता नहीं है, आप उनके लायक नहीं हो, आप वो समझने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आप सब समर्थ हैं, सब योग्य हैं, सब पात्र हैं, केवल इनकी उत्कंठा नहीं है, यही कमी मानता हूँ, और आप लोगों में कमी नहीं मानता हूँ। आप पात्र नहीं, ऐसा नहीं मानता हूँ। आप इस बात की तरफ उत्कंठा नहीं रखते हैं, इस बात की तरफ दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इस तरफ अनन्यता नहीं है कि इसी को ही समझना है। नहीं तो मैं जोर से कहता हूँ, कहा है कई बार, इस परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान कोई सुगम है नहीं, काम हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, इतना सुगम है, कठिनता का नाम निशान नहीं है। सीधी है जो बात है उसमें क्या कठिनता है, परंतु वो कमी भी आप में और नहीं देखता हूँ, एक ही कमी, इस बात को मैं ठीक तरह समझूं, इस लगन की कमी, वो परवाह नहीं है। और दूसरी संसार की आसक्ति, भाई ने सुबह प्रश्न किया, आसक्ति नहीं मिटती, आपने कहा तुम्हारे मन में औसु कहो, अब बड़ा फंस गया मैं तो, मन में तो यही आ रही थी मेरे, बिल्कुल अब मन में आ रही कहने से मैं बाध्य हो गया, नहीं तो ये बात मैं सभा में कहना चाहता नहीं था, एकांत में किसी व्यक्ति को कहूं मैं ये बात में थी, कहने भी आ रही पांच सात दिनों में, उसे क्या कहूं, तो किसको कहूं ये विचार, मेरे कोई विचार किया कि अमुक अमुक को मैं कहूं, ऐसी आ रही मन में, फिर मैं क्या तुम्हारे मन में उसको कहूं, अब उसी लोगे अब क्या करूं। अब वो बात आवाज फिर आई है कि वो सुबह का ही जो कहो, ये दो आदमी से मैंने सुना वो बात कहो, तब वो बात कहता हूँ, आप कृपा करके सुन लेना। मैं अपनी तरफ से खोलकर साफ बात कहता हूँ, परंतु समझ में आप लोग नहीं आती, तो मैंने आज सुबह कहा था, कभी मेरे को कहना नहीं आता, आप सुनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आपके समझ में नहीं आता, तो वक्तुरे भी तज्जाग्यम श्रोता यत्न बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ वक्ता की ही जड़ता होती है, सुनने वाला को नहीं बताई, मत सुनने सीखा में ये मैंने पढ़ा, वक्तुरे भी तज्जाग्यम आश्चर्य परिस्थिति इसकी भूमिका में, तो आप जानते नहीं है, मेरे को कहना नहीं आता, मैं इस बात से मानता हूँ, आप उसको स्वीकार नहीं करते, इस बात से मैं मानता हूँ मेरे को कहना नहीं आता है, नहीं तो कहने की मेरे में हिम्मत है, मेरे में उत्साह है, कहने से मैं उकताता नहीं हूँ, एक बार दो बार दस बार कहे पूछे तो प्रकृति है मेरी, परंतु इस नतीजे से मैं समझता हूँ मेरे को कहना नहीं आता, नहीं आपको भी समझे। अब वो बात कहता हूँ, अब ध्यान से सुने, सातवें अध्याय में भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की, और जिस जानने के बाद में जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, और मनुष्यों में हजारों में सैकड़ों में कोई एक ही यत्न करता है, यत्न करने वालों में कोई एक ही तत्व से जानता है, ऐसा का उसका तात्पर्य है, इस विषय की रुचि नहीं है लोगों की। लोग इसका अर्थ करते हैं कि हजारों में कोई यत्न करता है, यत्न करने वालों में कोई एक जानता है तो विषय कठिन है। इसमें लगाते हैं कुछ लोग, मैं बिल्कुल नहीं लगाता हूं इसमें। इस विषय की जिज्ञासा वाले कम है, इसकी अर्थ में लगाता हूं। अच्छा वो क्या है, तो उसमें अपरा और परा दो प्रकृति का वर्णन किया भगवान ने। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार इति यमे बिना प्रकृति सदा। ऐसे आठ प्रकार के भेदों वाली ये प्रकृति है अपरा। यम यम अपरा, ये अपरा है। इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में परा, इससे दूसरी परा प्रकृति मेरी है वो तुम समझो। वो क्या है, वो जीव रूप है जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इसके बाद में एक जीवनी नहीं भूतानी, प्राणी जितने गए एक जीवनी एक दम, ये दोनों परा अपरा प्रकृति ये दोनों ही जिसके कारण है। ऐसे सब संसार है जो मध्या में आवत संजाय थे किंचित सावर जंगम। सावर और जंगम, सावर वृक्ष लता घास आदि स्थावर है और चलने फिरने वाले जंगम है। ये दो तरह के प्राणी है जिनमें खेत और खेत का संयोग है, इससे ही प्राणी पैदा होते हैं सब। ये वहां दिखा है, वही बात यहाँ पर है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, तो सावर जंगम मात्र प्राण एतद कारण का नहीं। एतद योनि निगार्थ है, एते परा अपरा प्रकृति दो, ये जिसके कारण है ऐसे एतद योनि भूतानि सर्वाणि पानी मात्र ये दोनों कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसका विवेचन तेर में जाय में आया। इदं शरीरं कौन से क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। और एक जो व्यक्तितम था वो क्षेत्रज्ञ, वो जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। साधक शरीर ने लिया होगा इस विषय को, उसमें मैंने लिखा है। तो इदंता से क्षेत्र को बताया, इदंता से बताने का क्या तात्पर्य है उसका भी भगवान जाने। मैं जैसा मानता हूँ समझता हूँ वो आपके सामने बात करता हूँ, ठेका नहीं लेता हूँ। भगवान की आशा है, मेरे समझ में यही आता है आशा, मेरे समझ में दूसरा आता और बनावती कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। तो इदम शरीर कौन थे निवार, ये शरीर है वो इदम कैसे है। इदम कैसा तात्पर्य क्या है कि ये इदम होता है वो अहम नहीं होता, अहम होता है वो इदम नहीं होता। मानो मैं हूँ यह नहीं होता, जहाँ यह का प्रयोग होता है वहाँ मैं का प्रयोग नहीं होता। तो जानने वाला वो मैं हूँ, जानने में आने वाला शरीर है। तो शरीर अपना स्वरूप नहीं है, इसमें ही तात्पर्य इसका मैं समझता हूँ। इदं शरीरं कौन से क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसकी अभिधा है, इसका नाम है शरीर। तो इदं शरीर है। इसके बाद एतद् यो वेत्ति आया, एतद् यो वेत्ति में मैंने ये लिखाया है कि एतद् नाम क्या, इदं शरीर कह दिया, फिर एतद् कहने का क्या तात्पर्य। एक ये और इदम नाम ये दोनों एक ही बात है। इन दोनों में फर्क है व्याकरण की दृष्टि से, एक इदम और एतद शब्द में फर्क है। क्या फर्क है, इदम तो सामान्य सबको कह सकते हैं, एतद बहुत नजीक को कह सकते, एतद नाम ये और ये सब ये इदम तरह कह जा रहा है। एतद नाम ये साफ नजीक को एतद कहते, एतद का इदम का ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है। तो इदम शरीर कह दिया, अब एतद यो वेत्ति तम प्राउ क्षेत्र ये तद्वेद, तो इदम एतद है ना, एतद एतद पद है। इस शरीर में जो मैपन है इस मैपन का द्योतन कहा गया है। इदम शरीर तो शरीर सब कह दिया, जिसमें सब अपरापकृति सब आ गई। अब ये तो भी कहने का तात्पर्य है कि जो मैं अपन कहता है ना, अहंकार करता है, ये अहंकार का चेतन है। बस इतने अर्थ किया इसमें। अब यही अर्थ हमें भूमि रापो नलो वायु इसमें दिखता है। तो आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति बताई, खंग मनो बुद्धि रेवच और अहंकार इति इयम् मे बुद्धिना प्रवेशता। अब ध्यान देना, इयम् प्रकृति है आठ प्रकार के भेदों वाली, ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति कहते ही जिस तत्व की पृथ्वी है, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये एक गति के हुए अपरा है। ये अहंकार इति इयम् मे बिन्ना प्रकृति सदा, आठ भेदों वाली प्रकृति इयम है। इयम कह दो चाहे इदम कह दो, नपुंसक लिंग होते इदम कह देंगे, स्त्रीलिंग हो तो इयम कह देंगे, पुल्लिंग हो तो अयम कह देंगे। अयम को इयम को इदम को ये पर्याय है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग से फर्क पड़ता है, एक ही तत्व कहने वाले हैं। तो यहाँ अहम को भी इयम कहा, ये बात खास समझ। यहाँ पर तो इदम शरीर को कहा और एतत करके, ये मैंने अपना बात लिखा, एतत का तात्पर्य है अहंकार से। अहंकार भी एतत है, क्योंकि सबसे नजदीक मैं हूँ, ऐसा मनुष्य अपने भान होता है कि मैं हूँ, तो मैं सबसे नजदीक मालूम देता है, मन से बुद्धि से इंद्रियों से पांच भूतों से विषयों से सबसे नजदीक मालूम देता अहम। तो अहम का वाचक है एतत, एतत शब्द नदी का वाचक होता है, इदम का एतत का, ये भेद है व्याकरण की दृष्टि से। तो एतत यो वेत्ति, इसको जो जानता है, अहम को जानता है, तो अहम को सब जानते हैं, अहम प्रकाशित होता है, अहम प्रकाशक नहीं है, ये प्रकाश है। जैसे इस प्रकाश में वृक्ष दिखते हैं, ये व्यक्तियां दिखती है, ऐसे एतत अहम है, यह अहम ऐसा अहम दिखता है। हमारा प्रकरण यहां से शुरू होता है, इस बात को ख्याल करो, ये अगर समझ नहीं आए तो फिर पूछो। एक अधिकार के अहम, और यहाँ इवन से कह दिया अहंकार इति इयम् मे बिन्ना प्रवेशता था, तो ये आठ भेदों वाले इयम से कह दिया, तो इदम शरीर कहा वो यहाँ इयम कहा है, तो अहंकार भी इयम में आ गया। कोई अलग कर नहीं सकता, थोड़ा मैं आप पढ़ा लिखा पुरुष भी आठ भेदों वाली है, तो आपस में भेद है पृथ्वी से अहंकार तक के, परंतु जाति में फिर कोई बता नहीं सकता। जिस जाति की भूमि है उसी जाति का अहम है, और जिस जाति का अहम है उस जाति की भूमि सब है, भूमि रापो नरो को वायु। तो सुबह मैंने ये बात कही कि ये अहम है, ये भी एक पृथ्वी के ढेले की तरह है, पत्थर की तरह है, एक पहाड़ के पत्थर की तरह है, तो ये जरा आदमी की सही नहीं जाती, कैसे बात करते। अहम तो सब काम करने वाला है, और यहाँ तक भगवान ने कह दिया ये एकदम धार्य थे, जैसे एकदम एतत प्रकृति, इस प्रकृति से संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो ये धारण कर जाता है क्या है, ये मेरे मन में बहुत वर्षों से शंका थी कि जगत को कैसे धारण किया। संस्कृति टीकाएं देखी, मधुसूदन पर मेरा विश्वास था, चाह दे उन्होंने नाम रूपे व्याकरवाणी ये इसकी श्रुति दे दी, और ये सिर्फ उससे ही प्रकट होता है, परंतु मेरी शंका ठीक समाहित नहीं हुई, मेरे को संतोष नहीं हुआ। फिर विचार करने से मेरे इसका अर्थ भान हुआ, वो ये भान हुआ कि अहंकार भी पृथ्वी की तरह ही है, जैसे पृथ्वी है इदंता से, ऐसे अहम भी इदंता से है, और अहंता वो इदंता से देखा जाएगा तो बोध हो ही जाएगा उस आदमी को, और ये ठीक तरह से समझ ले अहम है ये इदंता की तरह, इदंता में आता है, ये तो भी हो गई थी। तो ये उसी जाति का, जिस जाति का पत्थर है, एक ढीला है, उसी जाति का अहम है। अब इसमें क्या विलक्षण होता है, तो आठ भेदों वाली है, तो आठ भेद है, तो आठ ही भेद है उसमें, मान आठों ही भिन्न भिन्न है एक एक से, पर अपरापन में कोई भेद नहीं है। अपरा जैसे भूमि अपरा है, आनंद आयु वायु मन और बुद्धि अहम, ये अपरा में, तो अपरा में तो बिल्कुल एक है, आवंतर भेद इसके अलग अलग है, परंतु अपरा प्रकृति एक है। अब ध्यान देना आप लोग, अब ये दिन धार्यते जगत का तात्पर्य क्या है, वर्षों मेरी शंका रही और उसके बाद समाधान हो वो बात कहता हूं। जगत को धारण किसने कर रखा है, मैं हूं और ये जगत है, ये मेरा है तेरा है आदि, ये जगत है सब, तो ये मैंने धारण कर रखा, अहंकार ने धारण कर रखा है, नहीं तो है क्या कि वासुदेव सर्वम है, जगत नहीं है। जगत को धारण किसने किया, अहम ने किया, ये मैंने आज समझा है। अब ये बात आपको पसंद आए तो मानो, नहीं तो मत मानो। तरह प्रकृति ने धारण किया तो अहम तो अग्रम आ गया। तो देखो, परा प्रकृति ने जगत को धारण किया तो स्वयं जगत को मानता है तब न जगत है। स्वयं जो परा प्रकृति है वो परा प्रकृति जगत को मानती है तब न जगत है। जगत है नहीं, वासुदेव सर्वम है, परंतु परा प्रकृति ने इसको धारण कर रखा है। अब परा प्रकृति के पास औजार क्या है, अहम है। खूब आप गहरा विचार करो, जिससे सब जगत को ये मानता है ये जगत है सभी, उसके पास में क्या है, अहम है। अहम अगर नहीं हो तो ये जगत को धारण नहीं करे, तो जगत को धारण क्यों किया कि अपरा प्रकृति को पकड़ लिया, अपरा प्रकृति को स्वीकार करने से जगत को धारण किया है। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृति अहम, ये दोनों मिलने से संसार ये जीव हुआ है। इसको कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ तो है अहम और इसको जानने वाला है चेतन, इन दोनों की ग्रंथि है। अहम में जड़ चेतन दोनों है। अहम इतना सूक्ष्म है कि अहम को संसार के साथ लगा लो तो मैं धनी हूँ, मैं गाया वाला हूँ, मैं जमीन का मालिक हूँ, मैं जमीन वाला हूँ, तो जमीन के साथ में अहम लगा दिया, और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ अहम लगा दिया। अहम इतना सूक्ष्म है जो किसी के साथ लगा दू, और इतने पोल है कि है ही नहीं, कोरा माना हुआ है, अहम केवल माना हुआ है। अहम माना हुआ ये कर्ता बनता है, गीता ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इसी मान्यते, कर्ता मानता है, तो कर्ता मानता है तो वो क्या करे, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत, मान्यता से मान्यता हटती है, तो मैं करता हूँ इससे एक कर्ता बन गया, और यही वहाँ पांच अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म के प्रत्येक विधम न्याय विपरीत, वहाँ चाहे शास्त्र विहित हो चाहे साध सिद्ध हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब पंचे के तस्वीर तो पांच हेतु होते हैं, इन पांचों में अहम मुख्य है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम। ये भी कुछ दिन कुछ वर्षा मेरे शंका रही कि अहम है ये न्याय और विपरीत काम करने में हेतु है, तो अहंकार है इसमें, तो चेतन भी है इसमें, जड़ भी है, तो वे जड़ चेतन है वो कार्यकर्ता कैसे हुआ। अरे ये कर्ता है तो कहते हैं एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलोऽयम्, तो यह ऐसा होने पर वो केवल आत्मा को कर्ता मानता है, अकृत बुद्धित्वात् उसने बुद्धि को बनाया नहीं, जैसे माँ से जन्मा है उसमें बुद्धि थी वैसी बुद्धि लिए बैठा है, चाहे सिर्फ शास्त्र पढ़ रहे चार वेद पढ़ रहे, मैं अकृत बुद्धि हूँ। गीता कहती अकृत बुद्धि, मैं अर्थ करता हूँ मेरे मन का करता हूँ, आप माने न माने कोई आग्रह नहीं है, मेरे संदेह नहीं है, मैं सब प्रसिद्ध दुर्मति, उसको दुर्मति कहा, इसकी बुद्धि दुष्ट है, जिसने ऐसा मानता है केवल आत्मा को कर्ता मानता है, ये दुष्ट बुद्धि है। तो केवल आत्मा कर्ता नहीं है, इससे सिद्ध क्या हुआ कि इंद्रियान मन बुद्धि को ले करके और भोगते क्या हो मनीषण, इसको भोगता कहते हैं, कर्ता कहते हैं, तो इनको साथ में लेकर ये कर्ता भोगता होता है। पुरुषा प्रकृति तो ही भूंगते, इसमें भगवान ने विश्लेषण किया है कि कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, करने में जो प्रकृति हेतु है, परंतु पुरुष है दुख दुख आराम भोक्तृत्व हेतु से पुरुष है वो सुख दुखों में हेतु है। साफ कह दिया उसके बाद ही तत्काल ही भगवान देरी नहीं लगाई, पुरुषा प्रकृति तो ही भूंगते, ये प्रकृति होने से भोगता है, नहीं तो देहेस्मिन पुरुषा पर, ये देह में होता हुआ पुरुष पर है, ये भोगता नहीं है। भोगता अपनी स्थिति मानने से भोगता बनता है, अगर न माने प्रकृति का समय न कहे तो भोगता नहीं है। तो प्रकृति में करने में तो आपने प्रकृति को मुख्य बता दिया और भोगने में पुरुष को बता दिया, ये क्या मतलब कि भोगना का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, सुखी होना अथवा दुखी होना, ये जड़ हो नहीं सकता, सुखी दुखी जड़ नहीं हो सकता, जड़ क्या ये स्थावर होने भी नहीं हो सकती इतनी, इसकी भी समझ में नहीं आती, सुख दुखी होता है, हवा अच्छी लगे जल अच्छा मिले तो राजी हो जाते हैं वृक्ष, खेत में वर्षा होने पर सुबह रंग बदल जाता है, 5-7-10 दिन वर्षा नहीं हो तो कुमला जाता है, तो इसमें भी रंग बदलता है, इसमें भी अहम है, भोगता है, सुखी दुखी होते हैं, जल जाता है वृक्ष भी गर्मी से सर्दी से, तो सुख दुख होता है। तो ये जितने भी अहम साथ रहते वो भोगता बनता है और भोगता स्वयं बनता है, क्योंकि सुखी दुखी सवाय जीव के हो नहीं सकता, जड़ हो नहीं सकता, क्या हो सकती है, तो पुरुष प्रकृति को ही भोगते, वो प्रकृति से पुरुष अपने को कर्ता और भोगता मानता है, इससे ही कर्म से बंधता है, वास्तव में ये कर्ता नहीं है और भोगता भी नहीं है। ये गीता ने साफ कहा अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थापित मानते है न करो से न लिखते थे, कर्ता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है, वास्तव में शरीर स्थापित जिस समय शरीर में स्थित मानता है अपने को उस समय भी स्वयं न करो थे न लिखते थे। इस वास्ते गीता ने कहा यश नाहंकृत भाव और बुद्धि यश न लिखते थे, जिसके अहंकृत भाव नहीं है जिसकी बुद्धि लेप नहीं है तो दुनिया को मार दो न मारता है न पाप लगता है। अठारहवें के 17वें श्लोक में ये बात कही यश नाहंकृत भाव, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते है ना, इस वास्ते तत्व भी ऐसा न माने, वहां भी यही कह दिया है 27वें कहा कर्ता की मन से तत्वित तो महाबाहो गुणा गुणेशु वर्तन थे, वर्तन थे कौन अहंकार, गुणा गुणेशु वर्तन थे उसमें अपने को कर्ता मानता है, और इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे इंद्रिया करता है, प्रकृति कर्माणी तो प्रकृति करता है, कर्ता प्रकृति है इंद्रिया है और करता है नान्य गुणे भी करता है, गुण करता है, गुण करता है, प्रकृति करता है और इंद्रिया करता है, ये करता है और भी आया है पंचेतर उसमें 5 हेतु बताए, न्याय होता है विपरीत हो उसमें कर्ता भी शब्द आया है, कर्ण भी आया है, क्रिया भी आया है, सब कुछ आया है, परंतु गीता का ठीक अध्ययन करोगे तो आत्मा में कर्ता मानने वाला मूड है और आत्मा को कर्ता नहीं मानता वो सोचता है, प्रकृति यही मुझे कर्माणी, और इतना जोर से कहा नहीं बकिंचित करो मित, ये तो साधक के लिए कहा और सिद्धांत में बताया कि नान्य गुणे भय कर्तारम यादव दृष्टान उपस्थिति, जब दृष्टा विचार कुशल पुरुष गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को नहीं मानता है और गुणों से परे मानता है तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, तो गुणों के सिवाय कर्ता नहीं तो कुर्ता कर्ता गुण हुआ, कर्ता प्रकृति हुई, कर्ता इंद्रिया हुई, कर्ता 5 हुए, तो ये स्वयं कर्ता नहीं है, स्वयं कर्ता नहीं है, कब कब के हर समय में कर्ता नहीं है। एक बात और कह दूं बीच में ध्यान से आप लोग सुने, हमारे से अलग वही होता है जो पहले से ही अलग है, और हमारे साथ एक वही होता है जो पहले से भी एक है। ये नया नहीं होता। प्रकृति का संबंध विच्छेद हमारा तभी होता है जब हमारा प्रकृति के साथ संबंध नहीं है पहले से, तब अलग होता है। अगर ऐसा एक होता तो अलग कभी नहीं होता। जैसे सूरज कोई प्रकाश को और तेजी को अलग कर दे, कैसे कर दे? अग्नि में से उष्णता और प्रकाश की शक्ति, लाल की शक्ति को निकाल दे, कैसे निकाल दे? एक होता निकलता नहीं है, निकलता तो एक नहीं है पहले से ही। ऐसे करता भोगता पड़ा स्वयं में नहीं है, नहीं है, नहीं है, तब ये नहीं रहता है। तो अनेक तरह से नान्य गुणे भी करता, और गुणों से अन्य करता कोई हो नहीं सकता। गुण ही करता होते हैं, प्रकृति ही करता होती है, इंद्रियां ही करता होती है, आत्मा करता नहीं होता। अगर मानता है नशा प्रसिद्ध दुर्मति, वो दुर्मति है, वो ठीक नहीं देखता है, ऐसा भगवान कैसे? इस बात से आत्मा करता नहीं, कभी नहीं करता हुआ। इस बात से अकर्तृत्व का अनुभव करना ही साधक का काम है और कुछ नहीं है। अपने में कर्तृत्व नहीं है, ये अनुभव करना है। कैसे करे? कि जैसे ये प्रकाश है, इस प्रकाश से ही संपूर्ण क्रिया होती है, मन प्रकाशक प्रकाशक है, कर्ता नहीं है। नहीं तो वेद पढ़े उसको फल होता है अच्छा, और वो शिकार करे तो खराब होता है। दोनों प्रकाश में करते, प्रकाश बिना वेद नहीं पढ़ सकता, और बिना हरण के नारी नहीं सकता प्रकाश के बिना, तो प्रकाश में होता है। मन प्रकाश किसी को ना वेद पढ़ाता है, ना किसी जानवर को मरवाता है, उनमें कर्ता प्रकाश नहीं बनता। ऐसे स्वयं ये प्रकाशक है, कर्ता नहीं है। यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश नोपलिप्त, ऐसे ही जैसे आकाश में नोपलिप्त, ऐसे सर्वत्र आवश्यक देह तथा मानो ये देह में लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाश यदि एक कृष्ण लोक विमुम रवि, इन संपूर्ण संसार को लोक प्रकाश करता है सूर्य, परंतु लिप्त नहीं होता है। कृष्ण लोक विमुम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश, संपूर्ण क्षेत्र मात्र दुनिया के क्षेत्र मात्र है, उनको प्रकाश करता है क्षेत्र की, परंतु लिप्त नहीं होता है। तो शरीर स्थोप बांधते न करोते न लिप्त है, लिप्त नहीं, और नहीं लिप्त होता उसको निर्लिप्तता का अनुभव होगा। प्रकृति कर्माणी सब कर्म प्रकृति के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता है, गुणों के सिवाय अन्य करता है नहीं कोई। आत्मा कर्तव्य तो हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते अकर्ता प्रकृति क्रियमाणानी क्रियमाणानी सर्वदा, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी से अहंकार भी क्रियमाणानी सर्वदा, पश्यति कारण अकर्तारम से पश्यति, ऐसा देखता है वो अकर्ता को देखता है, अकर्तापन का अनुभव करता है। केवल प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ऐसा देखने वाला ही अकर्तापन का अनुभव करता है, अकर्तारम से पश्यति, वो अकर्तापन को देखता है। अरे अकर्तापन साफ कह दे, न करोती न लिप्यते, अब लिप्त कैसे होगा? अब भोगतापन कैसे होगा? इसमें न कर्तापन है न भोगतापन है, ये जो ठीक समझ लेना है ये बात से बोध है। अब ये ठीक कैसे समझा जाए? तो भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति का वर्णन किया, तो अपरा प्रकृति में अहंकार आ गया है और परा प्रकृति में जीव आया है। तो जीव और अहंकार ये कितने भिन्न है, बिल्कुल अपरा प्रकृति है अहम और जीव है परा प्रकृति भगवान की। तो जड़ ग्रंथ एक आगते तो परमात्मा का अंश चेतन है, अहम ये जड़ है, दोनों को एक माना है, यही ग्रंथ है। इसी से जन्म मन होते हैं, पुरुष प्रकृति से ही भूंगते, और कारण गुण संगो से सदा सदी जन्म, गुणों का संग सदी जन्म होता है। तो इनके साथ एकता माना, तो वो एकता किसके साथ में? अहम के साथ में, अहम के साथ एकता मान से मन में बुद्धि में और क्या पृथ्वी जल से वायु आकाश में सब में एकता होगी। अपरा प्रकृति अहम मूल, तो अहंकार है अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति वृद्धि दे परा जीव भूताम, ये जीव भूत है, मजी वन को जीव लोग जीव भूत है सनातन, यहाँ भूत जीव भूत कह दिया, यहाँ प्रकृति जीव भूताम जीव भूता कह दिया, तो जीव रूप बना हुआ है। एक और मार्मिक बात बताऊं कि जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये तात्विक बात है। जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मासु, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म की प्राप्ति जीव को नहीं होती। चाहे ब्रह्म की प्राप्ति में जीव नहीं रहता, जीव रहते ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है? जो पहले ही प्राप्त था वही प्राप्ति होती है। ये जीव को, जीव को स्मृति लगता। तो स्मृति का अर्थ क्या? स्मृति नया ज्ञान नहीं होता है, स्मृति पुराने ज्ञान का नाम है। लब्धा नाम पुरानी बात है, नई बात नहीं है। स्मृति आ गई, ओ मेरे में कर्तृत्व नहीं है, ये याद आ गया। कर्तृत्व था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। केवल स्मृति आई, ओ मेरे में कर्तृत्व कहाँ है, मेरे तो प्रकाश तत्व केवल मेरे है। वो भी प्रकाशक पढ़े का अभिमान नहीं है। सूर्य प्रकाशित सबको करता है, मैं सूर्य के अभिमान नहीं कि मैं प्रकाश कर दूं। ऐसे स्वयं जीव में मैं प्रकाश कर दूं ये नहीं है, पर प्रकाश उससे ही होता है सभी। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, नहीं तो कहना चाहिए मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया, ऐसा कहना चाहिए था। ज्ञान मिट गया, ज्ञान हो गया, ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा नहीं कहा, स्मृति लब्धा। स्मृति अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभूत विषय अप्रमोष स्मृति। स्मृति के लक्षण किया है अनुभूत विषय का न चुरा जाना, अनुभूत विषय है उसको न भूलना, इसका नाम स्मृति। अनुभव रूप है ये, स्वयं अनुभव रूप होता हुआ अपने को कर्ता भोगता मानता है, तो अनुभव रूप का अनुभव हो जाना, इसका नाम स्मृति है। तो स्मृति नाम है पहले से शरीर स्थोप कौन थे, या न करोते न लेते थे, शरीर स्थोप देह स्मन पुरुष पर बिल्कुल अस्पृष्ट है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण से, प्रकृति से गुणों से, तो अहंकार सहित प्रकृति और ये प्रकृति अलग। यह एवं व्यक्ति पुरुषम क्या, कि देह स्मन पुरुष पर एवं व्यक्ति पुरुषम, एवं का किस बात है, पर का बिल्कुल संबंध रहित है। वो सर्वथा वर्तमान होते हैं, सब योग जाते फिर जन्म नहीं होता उसका, क्यों अहंकार के साथ के इससे जन्म होता है। तो अहम है ये इतना सुख में सुख साथ मिल जाता है, इस बात से इसकी मार्मिक बात ये है काम है नहीं, ये बात अहम माना हुआ है। गीता ने ये कहा अहंकार दुमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, क्या करे नैव किंतु करोमिति युक्तो मन्यते, ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल प्रकाश हूँ। पश्चिम संबंध सुसंध्य तीनों शरीरों की तेरह क्रिया बताई है, तीनों क्रिया वो करता है। इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन से, इंद्रिया करता हुई इंद्रिया से वर्तन की क्रिया हुई, तो क्रिया करता एक हुई, स्वयं करता नहीं है न भोगता है ही नहीं है। इसको करता भोगता मानते हैं, यही जड़ता है, यही अज्ञान है, यही भूल है। और भूल मिटने का नाम है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। ये दिन धारित जगत, तो जगत जो परा प्रकृति धारण कर रखा है, तो किस को लेकर के, अहंकार को लेकर के। अगर अहंकार को छोड़ दे तो जगत का संबंध ही नहीं है, फिर वासुदेव सर्व रहेगा, जगत रहेगा कहाँ, जगत की सत्ता ही नहीं है। क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसका नाम संसार है। अब वो संसार है कहाँ बताओ, एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी यहाँ देखा दो बार इंद्र आग मीठी, तो वो संसार नहीं है, बदल गया सब। तो ये कहाँ है, इसने केवल इसने धारण कर रखा है कि संसार है। अब इसे पूछवा, मैं तो बोलता जाऊंगा, समय हो गया है, तो मैं बोलना मेरा बंद नहीं होगा, बहुत बातें आती है। यही बात खास जानने की है, खास समझने की है, और गीता में खुलासा नहीं हुआ है। गीता की टीका लिखी उसमें खुलासा नहीं किया है, और मेरी खुलासा करने की मन में नहीं थी, नहीं कहना। आपने कह दिया मन में रुको, मन में यही बात आ रही थी, इस वास्ते मुझे ये बात कहने की मन में नहीं थी। उसने आसक्ति कही, तो आसक्ति की जड़ कट जाएगी जब अहंकार है वो भी कर्ता बनता है, प्रकृतिस्थ होने से कार्यकरण कर्ता बनता है। तो इन्हें प्रकृति में स्थित नहीं, वो कैसे कर्ता बनेगा, कैसे भोगता बनेगा, वो कैसे नहीं है, आसक्ति कैसे मिट जाए, ये मैं कहता हूँ। वैसे अहंकार तक आप अलग समझो, आसक्ति पैदा नहीं होगी। असक्ति आसक्ति कैसे होती है, ध्यान देकर सुनना। आसक्ति भोग भोगने के बाद होती है। पहले भोग भोगता है, उसमें रस आता है, उससे आसक्ति बनती है। आसक्ति पहले नहीं बनती, पर भोग को बनता है, पर प्रकृति से ही भोगते है। प्रकृति में से तो और भोगता बनता है, भोगता बनता है, आसक्ति बनती है। प्रकृति से पर है, देश में पुरुष से पर है, फिर भोगता कैसे बनेगा, तो आसक्ति कैसे बनेगी। आसक्ति जब से कट जाएगी वो बात बताई, उसको भाई का उत्तर दे दिया, आपका कहना भी कह दिया, तो तुम्हारी मन में सुख हो, मन में वो कह दी और आसक्ति जड़ काट ली। ये बात हरी बात नहीं समझ सकता इस बात को, परंतु आप लोगों के लिए कठिन नहीं है। मैंने पहले आरंभ में ही कह दिया, आपको मैं अपात्र नहीं समझता हूँ, आपको अयोग्य नहीं समझता हूँ, आपको अनधिकारी नहीं समझता हूँ, कि आप लायक नहीं, ऐसा नहीं मानता हूँ। केवल कृपा करके इंद्र की उत्कंठा जागृत करो, तो सबसे सुगम बात है तक समझ में आ जाए। पर इसकी परवाह ही नहीं है, ये दे परवाही है, काम बन रहा है, और कोई आप अयोग्य नहीं। वेदांत का आदि व्यक्त कब होता है, विवेक और वैराग्य समाज सब संति मुक्त होता, फिर सवालों मन मिल जैसे फिर तत्म पदार्थ संसद आज साधन होते हैं, तो अधिकारी होता है। हमारे अधिकारी सब मात्र मनुष्य है, क्यों फर्क देखो, क्यों तकलीफ उठाओ, सीधी सादी बात है। मैं हूँ, इसमें हूँ बना है, ये तो है प्रकृति का, और मैं बना तो हूँ बना है पुरुष का, ये पुरुष का अंश हुआ हूँ बना, वो मैं होने से हूँ हो गया, मैं नहीं है बना है बना परमात्मा का स्वरूप है। इसी की बात है, नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा गीता भवन सर्वप्रथम में आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तद अनुसार दिनांक 12 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।